Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 1, Arjuna Vishada Yoga, Text Number 43. इस आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण एवं ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए मन से समस्त भौतिक मलिनता और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्व पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 43। कृपया मेरे साथ इन पवित्र वचनों का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अर्जुन कह रहे हैं, उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकी नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। एक बार फिर, उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां नरकी नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। फिर से उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकी नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। लास्ट उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकी नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। शब्दों का अर्थ देखिए। उत्सन्न, उत्सन्न का मतलब होता है नष्ट हो जाता है। क्या करने से नष्ट हो जाता है? जैसे अर्जुन पहले से बताना शुरू किया ना, श्लोक नंबर 40 से अर्जुन ने युद्ध के दुष्परिणाम बताना शुरू किए हैं। श्लोक नंबर 40 देखेंगे, बल्कि उससे भी पहले श्लोक नंबर 39 से देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या लिखा, अर्जुन ने कहा कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मा विभावाच्युत। कि अगर कुल का नाश हो जाएगा, यानी युद्ध करने से पहला दुष्परिणाम क्या होगा, कुल का नाश हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, कुल का नाश होने से कुल धर्म सनातना, कुल की सनातन परंपरा नष्ट हो जाएगी, दूसरा, ठीक है। और उस तरह से क्या होगा कि धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मा विभावाच्युत, और अगर धर्म नष्ट हो जाएगा तो अधर्म में प्रवृत्ति होगी। ये तीन पहले श्लोक में 39 में बताया अवगुण दुष्परिणाम बताया, उसके बाद 40 में क्या बताया, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टा सुवाश्रेय जायते वर्ण संकर। अधर्माभिभवात् कृष्ण, अब अधर्म तो बढ़ गया ना, उसके बाद चौथा दुष्परिणाम क्या निकलेगा, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय, कुल की सारी स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, और स्त्री शुद्धता सुवाश्रय, जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जायते वर्ण संकर, और वर्ण संकर अवांछित संतान उत्पन्न होंगी। पांच दोष हो गए। उसके बाद 41 में अर्जुन ने कहा संकरो नरकायैव कुलात्मानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया संकरो नरकायैव। यानी कि जब अवांछित वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगी तो क्या होगा, पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा, और पतंती पितरो ये श्याम लुप्त पिंडोदक क्रिया, और ऐसे पितृ ऐसे पतित कुलों के पुरखे जो हैं उसके उन को, क्योंकि जल और पिंड अर्पण नहीं होगा, क्रियाएं नहीं होंगी, तो वो नरक में गिरेंगे। ये कितने दोष हो गए, 7, ठीक है। पहला क्या बताया था उन्होंने कि कुल की परंपरा नाश हो जाएगी, और परंपरा नष्ट होने से क्या होगा, सनातन कुल नष्ट हो जाएगा, और अधर्म धर्म खत्म हो जाएगा, फिर धर्म अधर्म बढ़ेगा, और फिर कुल की स्त्रियां अपवित्र हो जाएंगी, उसके बाद संतान वर्ण संकर उत्पन्न होंगी, नारक के जीवन होगा, और कुल के जो पुरखे हैं उनको पिंडदान अर्पण नहीं होगा। उसके बाद अर्जुन ने श्लोक नंबर 42 में बताया दोषेरैते कुलज्ञानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतम्। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करने वाले हैं और इस तरह अवांछित संतानों के जन्म देने वाले हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कुल कल्याण कार्य नष्ट हो जाएंगे, यानी जाति धर्म और कुल धर्म नाश हो जाएंगे, 9 हो गए। और आज सबसे भयानक जो परिणाम निकलने वाला है युद्ध का, जो हद से भी ज्यादा भयानक परिणाम है, उसके विषय में अर्जुन बात कर रहे हैं और कहते हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन। क्योंकि जब कुल उत्सन्न नष्ट हो जाएगा, कुल धर्मान धर्म जो भी धर्म है कुल का वो नष्ट हो जाएगा, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, मनुष्याणाम मनुष्यों का, यानी कि इस तरह से मनुष्यों का जब हत्या होगी तो सारा जो भी धर्म नष्ट हो जाएगा, उससे क्या होगा, हे जनार्दन। कितना सुंदर नाम भगवान का लिया अर्जुन ने। अर्जुन ने कहा मनुष्याणाम जनार्दन, और कहा नरके नियतम वासो। इतना भयानक है कि उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, नरक ही मतलब नरक में, नियत मतलब सदैव, छुटकारा ही नहीं मिलेगा, कंटिन्यूस उनको नरक में रहना वास करना पड़ेगा। भवती होता है इति इस प्रकार अनुशुश्रम, अनुशुश्रम वर्ड जो है ना वो बहुत सार्थक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, अनु का मतलब होता है पीछे, शुश्रम मतलब सुना, यानी कि मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया आपको, ये जो मैंने बोला है कि नरक में चले जाएंगे और वहां पर उनको सदैव रहना पड़ेगा, ये तो मैंने सुना है गुरु परंपरा से सुना है। अनुशुश्रम मना किसी एक से नहीं सुना, पूरी परंपरा ये कहती आई है कि क्या है। आप अनुवाद देखिए, अर्जुन कह रहे हैं हे प्रजापाल कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। जनार्दन कहकर भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया है। और जनार्दन का क्या अर्थ होता है, जनार्दन का अर्थ, जन का मतलब होता है जन समूह, मना जो पब्लिक होती है ना उसको बोलते हैं, और अर्धन का मतलब अनेक अर्थ जो है शास्त्रों में बताए गए हैं। और अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि कल्याण करने वाले, यानी जो सबका कल्याण करने वाले हैं। हे जनार्दन, आप तो सारे ही भक्तों का, जो आपको बुलाते हैं, जो आपका नाम लेते हैं, जो आपकी शरण में आते हैं, उनका कल्याण करने वाले हो, तो फिर मेरे पितरों को, मेरे कुल को नरक में क्यों भेजना चाहते हो, मुझे उसके लिए क्यों उत्साहित कर रहे हो। आप जानते हो, क्योंकि मैंने गुरु परंपरा से सुना, कोई मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा हूँ, गुरु परंपरा से सुना, इसका मतलब है ऑथेंटिक बात है कि अगर ऐसा होगा, कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, नरक ही नियतम वासो, उन सबको कंटिन्यूस नरक में वास करना पड़ेगा। तो क्योंकि आप तो सबका कल्याण करने वाले हो, फिर मेरे साथ ऐसा अनजस्टिस क्यों करना चाहते हो। यहाँ पर अर्जुन को यह सोचना चाहिए था कि जब भगवान है वो जनार्दन है, उनके कभी शत्रु भी नरक में नहीं जाते, उनके शत्रुओं को भी जब मुक्ति मिलती है तो क्या अपने मित्र या उनके कुल को भगवान नरक में भेज देंगे। यहाँ पर अर्जुन को यह ख्याल नहीं आया और कहने लगे जनार्दन आप बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर जनार्दन का दूसरा अर्थ देखा जाए तो जन का मतलब है जन समूह और अर्धन का मतलब होता है रक्षा करने वाले। तो अर्जुन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, जनार्दन नाम से संबोधित करते हुए भगवान को कहते हैं कि आप ही हमारे रक्षक हो, हमारा संपूर्ण कुल आपके होते हुए नरक में चला जाएगा, आप ऐसा काम क्यों करवाना चाहते हो मेरे साथ। क्योंकि जब कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, फिर तो जाहिर सी बात है वर्ण संकर संतानें तो सबको नरक में भेज देंगी, फिर आप जनार्दन होते हुए ऐसा क्यों करते हो। ये जनार्दन नाम बहुत ही सार्थक है। और विष्णु सहस्त्र नाम में 139 श्लोक में जनार्दन नाम का उपयोग किया गया है, और श्लोक बहुत सुंदर है। उसमें कहा गया है योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पा ही कर्मचा वेद शास्त्र शास्त्राणि यज्ञानम एतत् सर्वं जनार्दन। योगो ज्ञानम तथा सांख्यम, योगो मना योग जो सिद्धियां करते हैं वो, ज्ञानम मतलब ज्ञान, सांख्य मना सांख्य, और विद्या यानी जो भी विद्या है, जो भी ज्ञान का जो विद्या हासिल करते हैं वो, शिल्पा, शिल्पा आदि मना सारे कर्मचार जितने भी कर्म हैं, वेदा शास्त्राणी यज्ञानम, वेद हो शास्त्र हो जो भी ज्ञान हो वो एतत् सर्वम जनार्दना, ये सब जनार्दन से ही उत्पन्न हुआ है। यानी हर ज्ञान, जितना भी संसार में ज्ञान है, उस ज्ञान का उद्घाटन कहाँ से हुआ है, इस ज्ञान का उदय कहाँ से हुआ है, एतत् सर्वम जनार्दना। और भगवान श्री कृष्ण साक्षात स्वयं खुद भी कहते हैं 15.15 में, चैप्टर नंबर 15, टेक्स्ट नंबर 15, 15 का 15 मुझे बहुत सुंदर लगता है और बोलने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भगवान ने इसे बता दिया। भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदे वचाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में स्थित हूँ, मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निस्संदेह वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला भी मैं हूँ। भगवान ने कहा जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ वेद है, उसको जानने वाला, बनाने वाला एवं जानने का लक्ष्य सब कुछ मैं हूँ। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि इसका मतलब है क्योंकि सब कुछ तुमसे ही आया जनार्दन, तो ये ज्ञान जो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रमा, कि ये जो ज्ञान है कि अगर कुल धर्म का नाश हो जाएगा तो सब नरक में जाएंगे, वो भी तुमसे ही आया है। तो अगर तुमसे ही आया है तो तुम मुझे ऐसा कार्य करने के लिए क्यों उकसा रहे हो जिससे मेरे समस्त पुरखे, मेरा समस्त कुल धर्म नाश हो जाए और सबको नरक में जाना पड़े। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से तात्पर्य में समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर ना आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। अर्जुन बोला, ये मैं थोड़े ना कह रहा हूँ, ये तो परंपरा से आया, मैं परंपरा वाली बात बता रहा हूँ। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आप समझते हो कि आपको वास्तविक ज्ञान हासिल करना है तो उसकी एक ही विधि है, क्या, जो गुरु परंपरा से आया है उसी से ज्ञान हासिल कर किया जाए। वैसे तो ज्ञान प्राप्त करने के कई प्रमाण, जैसे हमने बताया अनुमान प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण है और शब्द प्रमाण है, लेकिन अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है, कंप्लीट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, ये हम पढ़ चुके। और लेकिन और शास्त्रों के अनुसार जो गुरु परंपरा से हमें पता चलता है वो एकदम परफेक्ट नॉलेज होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। कितना सीधी सी बात है, जिसको पहले से खबर है वही आपको बताएगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हो जिसको पता ही नहीं है वास्तविक ज्ञान क्या है, तो वो आपको क्या बताएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 4.34 में, तद्विद्धि प्रणिपाते न परि प्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने न तत्वदर्शन। जो तत्वदर्शी है, जिन्होंने तत्व को सही तरह से देखा है, जिन्होंने गुरु परंपरा से सीखा है, उसी के पास जाना। ऐसा नहीं कि किसी एरे गेरे के पास चले जाओ तो वहां से तुम्हें गलत ज्ञान प्राप्त होगा। तो ज्ञान हासिल करने के लिए जो सोर्स हम ले रहे हैं, हमें ये देखना है कि वो परंपरा से आया है या फिर अपनी मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। आगे शब्द बोल रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। यानी कि जब हम मरते हैं ना, उससे पहले प्रायश्चित करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर नरक में जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रायश्चित कर लेंगे ना तो नरक में नहीं जाएंगे। तो नरक के विषय में यहाँ पर तो श्रील प्रभुपाद जी आज हम बता रहे हैं कि अगर हम नहीं करते हैं, प्रायश्चित नहीं करते हैं, तो जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आगे कहते हैं, ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना पड़ेगा। श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि देखो, अगर तुमने अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं किया तो तुम्हें नरक में भेज दिया जाएगा, और वहां पर जितने भी पाप कर्म किए हैं उनका उनके लिए कष्टमय जीवन बिताना पड़ेगा। यह अध्याय और स्पेशल ये वाला श्लोक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस अध्याय के इस श्लोक को पढ़ने से पापों के लिए भय उत्पन्न होता है। जब तक मनुष्य के हृदय में पाप कर्मों के लिए भय उत्पन्न नहीं होता, तब तक वो पाप करता ही रहता है। और यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं कि जो ऐसा कार्य करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, उनको निश्चितम नियतम नरक, उनको कंटिन्यूस नरक में भेजा जाएगा। तो नरक के विषय में आज हम थोड़ा पढ़ेंगे, जो कि श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में वर्णन किया गया है। किंतु 5 एंड टेक्स्ट चैप्टर नंबर 26 में 28 टाइप के नरक के विषय में बताया गया है, और इन नरकों में जो अपराध करते हैं इस संसार में उनको भेजा जाता है, और उनकी पूरी डिटेल बताई गई है कि किस किस व्यक्ति के किस किस अपराध की वजह से उसको किस किस नरक में भेजा जाता है। तो हम उसके विषय में थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहला है तामसर नरक। उस नरक में किसको भेजा जाता है? जो व्यक्ति दूसरों की पत्नी या धन को छीन लेता है, उसको यमदूत रस्सियों से खींचकर तामसर नरक में ले जाते हैं, और उसे वहां पर क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ती हैं? उसे वहां पर काटा जाता है, पीटा जाता है, भूखा प्यासा रखा जाता है, इतना कष्ट दिया जाता है क्योंकि उसने इतना अपराध किया होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अंध तामसर नरक। जो व्यक्ति अपने मित्रों को धोखा देकर उसकी पत्नी को भोगता है, कितना अपराध है, और उसको ऐसे नरक में भेजा जाता है जिसका नाम है अंध तामसर नरक, और वहां अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता। इतनी यातनाएं मिलती हैं उसको, इतना कष्ट मिलता है, उसके आंखों के आगे सिर्फ अंधकार ही अंधकार रहता है, और वो कष्टमय अंधकार से बाहर निकलना चाहते हुए भी नहीं निकल सकता। उसके बाद तीसरा नरक है रवरवा। उस नरक में कौन जाता है? जो व्यक्ति अपने शरीर और परिवार के पालन के लिए अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है, उसे रवरवा नामक नरक में भेज दिया जाता है, और वहां पर उसको क्या याचना दी जाती है, किस तरह से उसको तकलीफें दी जाती हैं? रवरव कहते हैं सांप से भी जो करोड़ गुना ज्यादा तीखा जिसका डंक होता है, ऐसे है ना जानवर होते हैं, वो उसको काटते हैं और उसको बहुत ज्यादा कष्ट दिया जाता है। चौथे नंबर पे आता है महारवरवा नरक। इसमें कौन से प्राणी जाते हैं? जो अपने परिवार वालों को भी कष्ट पहुंचाकर केवल अपने शरीर को सुखी करने के लिए उसमें भेजते हैं, शरीर को सुखी करने के लिए पूरा जिंदगी गुजारते हैं, अपने परिवार वालों की भी चिंता नहीं करते, अपने मित्रों की भी चिंता नहीं करते, उनको भी दुखी करके अपने आप को सुखी करने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, उनको महारावरव यानी उससे भी अधिक कठोर। महा पहले रावरव में तो ऐसे थे ना जो सांप से करोड़ गुना ज्यादा डंकीले थे, बहुत ज्यादा, और ये तो उससे भी करोड़ गुना ज्यादा है। हम सोच नहीं सकते हैं ये कैसी यातनाएं होंगी। ये तो सिर्फ पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, बस वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन एक सांप भी यदि किसी को काटता है तो उसको कितना तड़प रहा होता है, उसके मुंह से झाग निकल रही होती है, और करोड़ों सांप एक साथ जब काट रहे होंगे तो उसके शरीर में कितनी पीड़ा होती होगी, उसको कितना दुख। और आपको ये यहाँ पर ये प्रश्न तो उत्पन्न हो गई कि हमारा यह शरीर तो यहीं पर रह जाएगा, फिर यातना किसको मिल रही है, कठिन उसको डंक किसको लग रहे हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा जो शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर, अब देखो हमारे शरीर में 8 तत्व जो मैंने बताया आपको क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो 5 चीजें ना स्थूल शरीर वो यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद मन बुद्धि अहंकार और अहंकार और आत्मा से निर्मित जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, वो कहाँ चला जाएगा? वो नरक में जाएगा और उसको एक अलग से शरीर दिया जाएगा, इसको कहा जाता है यातना शरीर। यातना शरीर का मतलब होता है उसको इतना भी मारा जाए, इतना भी पीटा जाए, इतना भी काटा जाए, उसको कितना नोचा जाए, कितना भी उसको डंक मारा जाए, उसको जलाया जाए, उसका शरीर नष्ट नहीं होगा, वो मरेगा नहीं। नरक में केवल यातना होती है, मृत्यु नहीं होती। तो उसको एक शरीर दिया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ यातनाएं भुगतने के लिए वो शरीर मिलता है। और हमने चार नरक पढ़े, उसके बाद पांचवा नरक है कुंभीपाक नरक। जो व्यक्ति अपने स्वाद की पूर्ति के लिए पशुओं को भून कर खाता है, कल पूछा था ना किसी ने कि कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि हमें जानवरों को नहीं खाना चाहिए। जानवरों को खाना नहीं चाहिए नहीं बोलते हैं, आपको शास्त्र ये बोलता है कि ये करोगे तो ये होगा। तो देख लीजिए शास्त्र क्या कहता है, खोल कर देख लीजिए भागवतम महापुराण के पांचवें स्कंद के 26वें अध्याय को, आपको पता चल जाएगा कि कुंभीपाक नरक में वो व्यक्ति जाते हैं जो अपनी स्वाद की पूर्ति के लिए पशुओं को भून कर खाता है। और उसे यमदूत कुंभीपाक नरक में लेकर जाते हैं और वहां उसको क्या होता है पता है, उसे वहां उबलते हुए तेल में भूना जाता है, कंटिन्यूस उसको भून भून कर उसको तकलीफें दी जाती हैं। उसके बाद है छठा कालसूत्र नरक। जो व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या करता है उसको कालसूत्र नरक में 80,000 मील तांबे की जमीन, यानी कि उसका उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि वो कितना है, इतनी ज्यादा उसकी 80,000 मील तक तांबे की जमीन होती है और ऊपर से करोड़ों सूर्य और नीचे से अग्नि उसको तपा रही होती है। आप जरा खाली सोच के देखिए, वो जमीन जो तांबे की हो, ऊपर से सूर्यों करोड़ों सूर्य की गर्मी और नीचे से जलस्ती हुई अग्नि की ज्वाला जो उसको तपा रही होती। कभी कभी हम लोग जाते हैं ना मंदिर में, तो सूर्य तेज गर्मी के मौसम में होता है और वो फर्श जो टाइल्स का बना होता है हम उस पर पांव नहीं रख सकते हैं, इतना गर्म होता है। और वो तो तांबे की जमीन है और तांबा जो है ना वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और उसको अगर इतना ज्यादा अग्नि से तपाया जाए तो सोच भी नहीं सकते कि वो कितना ज्यादा गर्म होगा। और वहां पर कौन जा रहा है, जो व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या करता है। अब ब्राह्मण जो है, जो कि भक्त है या फिर जो भगवान के नाम का जप करते हैं, उनकी कोई हत्या करता है तो उनको भगवान थोड़ी ना ऐसे बख्श देते हैं, तो उनको इसे नरक में डाला जाता है। और वहां पर क्या होता है, वो कैसे पांव रखे इसी धरती पर, वो इधर उधर दौड़ता है, बैठता है, खड़ा होता है, लेटता है, तड़पता है, और लेकिन उसको वही, क्योंकि 80,000 योजन तक सिर्फ वही जमीन है, ऐसा नहीं है कि साइड में शेल्टर है वहां पर वो भागेगा, कंटिन्यूस ओपन सिर्फ ये जमीन होती है, उसको वहीं पर दुख भोगना पड़ता है। उसके बाद है 80 पुत्रों नरक। जो व्यक्ति बिना किसी कारण के धर्म के सिद्धांत को छोड़ता है, यानी कि धर्म को नष्ट करता है, जब यमदूत उसको कोड़ों से मारते हैं वो भागता है, परंतु 80 पत्र वन, ये वन जो है ना, ऐसा वन है जिसके वृक्ष के जो पत्ते हैं वो तलवार की धार जैसे नोकीले होते हैं, वो भागता है यमदूत उसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि वो पकड़न जाने के डर से भाग रहा होता है और वहां पर इतने सारे वृक्ष होते हैं तो तलवार के समान जो तीखी पत्तियों के वाले जो वृक्ष हैं उनके साथ उसका शरीर टकराता है और उसका शरीर छित्र छित्र हो जाता है और वो भयानक चीत्कारें करता है। उसके बाद नंबर 8 है सुकर मुख नरक। सुकर कहते हैं सुअर को और मुख मतलब सुअर के मुख जैसा, जो चबा चबा के खाता है ना किसी को, तो ऐसे उसके मुख जैसा नरक होता है। और राज्य का जो अधिकारी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा देते, मतलब लोग अपराध करते हुए सोचते नहीं है कि हमें क्या क्या होगा उसके बाद में, क्या हमें सजाएं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर बताया गया राज्य का जो अधिकारी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा देता है उसको यमदूत सूकर मुख नरक में लेकर जाते हैं और गन्ने के समान उसको कुचल देते हैं, जिस तरह गन्ने का रस निकलते तो कैसे कुचला जाता है उसको, उसी तरह उस नरक में उसको कुचला जाता है। उसके बाद नंबर 9 है अंधकूप नरक। ये सुना ना हमने पहले भी जगजीत के, एक अंधकूप महाभयानक। तो ये नरक, इसमें कौन जाता है, जो व्यक्ति अन्य पशुओं पक्षियों या कीड़ों की अनावश्यक हिंसा करता है। अनावश्यक का क्या मतलब है, जो आपको कष्ट नहीं दे रहे हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े जो मतलब आपके घर पे नहीं है, कष्ट नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी लोग उनको पकड़ पकड़ के मारते हैं, पशुओं को, पक्षियों को, उनकी हिंसा करते हैं, और उनको क्या होता है वहां पर ऐसे नरक में भेजा जाता है, अंधकूप में, जहां पर अंधकार में वे ही पशु पक्षी और कीड़े उसको सताते हैं, कंटिन्यूस उसको काटते हैं, उसको नोचते हैं, और एक क्षण के भी उसको आराम करने नहीं देते हैं, वो निरंतर कष्ट में रहता है। उसके बाद नंबर 10 है कर्मी भोजन, ये नरक का नाम है, कर्मी भोजन, कृमि भोजन, सॉरी, कृमि का मतलब होता है कीड़े, और भोजन जो व्यक्ति अतिथियों, वृद्धों और बच्चों के होते हुए उनको भोजन ना बांटकर सिर्फ सब खुद ही खा जाता है, उसे अतिथि अपवित्र कृमि भोजन नरक में भेजा जाता है, और वहां पर उसको क्या किया जाता है, 8 लाख नील के विस्तार वाला कुंड है जो कीड़ों से बड़ा हुआ है, और इस कुंड में वो कीड़ों को खाता है और कीड़े उसे खाते हैं। कितना भयानक नरक होगा, कंटिन्यूस यही याचना उसको मिल रही होती है, और ये यातनाएं सह सह कर वो भले मरने की भी इच्छा करे, लेकिन उसका क्योंकि यातना शरीर है तो उसको मौत भी नहीं मिलती। आगे नंबर 11 है संदना नरक है, जो व्यक्ति दूसरों का सोना और धन छीन देता है उसको संदना नरक में ले जाकर लोहे की गर्म सलाखों से उसके शरीर की खाल उतार दी जाती है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। वो मरता नहीं है, ये यातना शरीर का एक स्पेशल गुण है कि उसको आप काटोगे ना उस टाइम पर आपको कटने का वही दुख होगा, लेकिन शरीर फिर से जुड़ जाएगा और नेक्स्ट यातना के लिए फौरन से तैयार हो जाएगा। उसके बाद नंबर 7 है तप्त सुरमी, ये बहुत ही खतरनाक नरक है, और इसके विषय में सुनकर कांप जाए बंदा। उसमें क्या लिखा हुआ है, विवाह के अतिरिक्त जो स्त्री पर पुरुष और जो पर पुरुष पर स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं उसे यमदूत तप्त सुरमी नरक में ले जाकर उसी स्त्री या उसी पुरुष के लोहे से बनी हुई मूर्ति का जो कि आग की तरह तप रही होती है उसका आलिंगन करने के लिए विवश कर देते हैं, और उसको कंटिन्यूस उसी आग की बनी हुई पुतली के साथ आलिंगन करते हुए रहना पड़ता है। वो निकलना चाहता है लेकिन फिर भी जो यमदूत हैं वो जबरदस्ती उसको कहते हैं नहीं, तो इससे तुम्हें यही शौक था ना, करके देखो, अभी यहाँ पर करो। और उसके बाद है वज्र कंटक सालवली नरक, जो व्यक्ति पशुओं के साथ विभिचार करता है, कितनी हीन बातें लिखी हुई हैं, सोचकर भी डर लगता है, लेकिन होता होगा, अब भागवतम में लिखा हुआ है तो जाहिर सी बातें गलत नहीं होगा। उसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति पशुओं के साथ सेक्स करते हैं उसे वज्र कंटक साल वाली नरक में वज्र के समान कांटों वाले वृक्ष पर लटका कर यमदूत नीचे की ओर खींचते हैं और उसके पूरे शरीर को छलनी छलनी कर देते हैं, और सिमल के पेड़ में जिसमें वज्र के समान कांटे लगे होते हैं यमदूत रस्सी से उसको खींचकर रगड़ने से बचने के लिए वो पेड़ से चिमटता है कि मैं खींचू नहीं, लेकिन जब पेड़ से चिमटता है तो उसका शरीर, क्योंकि पेड़ भी कांटों वाला होता है, वज्र के समान कांटे होते हैं, तो उसका शरीर जो है वो कांटों से छलनी हो जाता है, और उसको एहसास दिलाते हैं कि यही वो शरीर है जिसको तृप्त करने के लिए तुमने पशुओं के साथ संभोग किया, अब इन कांटों के साथ संभोग करो और देखो कि तुम्हें कितनी यातना मिलती है। उसके बाद नंबर 14 वैतरणी नरक, वैतरणी नरक में क्या होता है, शासन का जो अधिकारी सच्चे धर्म में बाधा डालता है, यानी कि जो राज्य का अधिकारी सच्चे धर्म की बात नहीं हो भी रही होती है फिर भी उसमें बाधा डालता है, उसे यमदूत वैतरणी नरक में फेंक देते हैं, वहां जल के खतरनाक जानवर इसको नोच नोच कर खाते हैं और उसके चारों ओर मल मूत्र पीप रक्त केश हड्डी मज्जा मांस और चर्बी बढ़ी रहती है, और वो नदी बहुत ही अशुद्ध पदार्थों के साथ भरी हुई होती है और उसी में वो रहता है और जानवर उसको नोच नोच कर खा रहे होते हैं। उसके बाद नंबर 15 उल्लोध नरक, इसमें कौन जाता है, जो व्यक्ति सदा वैश्यावृत्ति में लगा रहता है, वैश्याओं के साथ संभोग करता रहता है, उसे यमदूत उल्लोध नामी नरक में गिरा देते हैं जो मल पीप लार से भरा रहता है और उसे उन्हीं चीजों को खाना पड़ता है। कितना अपराधमय जीवन होगा, कितना दुखमय नरक होगा जहां पर उसको ये सब मिल रहा होगा। नंबर 16 है प्राण रोध नरक, जो व्यक्ति अपने सुख के लिए व्यर्थ ही पशुओं की हत्या करता है उसे यमदूत प्राणरोध नामक नरक में, जहां पर उसकी इसी प्रकार से हत्या की जाती है जैसे उसने उन पशुओं की थी। बस मनोरंजन के लिए, कोई और काम नहीं, बस ऐसे उस उसको भी मारो, उसको भी ऐसे जानवरों को मारते हैं ना, जंगलों में जाकर शिकार करते हैं, तो उनको भी उसी तरह से हत्या की जाती है। नंबर 17, बैतमम नरक, जो व्यक्ति पूजा को ढोंग करके पशुओं की हत्या करता है, जहां पर वहां पर ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो पूजा के कारण बस ये सेक्रीफाई कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो पशुओं की हत्या कर रहे हैं, सिर्फ ढोंग होता है, बाकी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, उसे यमदूत अपार कष्ट देते हैं बैतम नरक में। उसके बाद बहुत ही हीन नरक है, बोलते हुए भी मुझे विमच जैसा हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है 18वां नरक है वो लाला पक्ष नरक, जो उच्च परिवार का व्यक्ति अपनी पत्नी को अपना वीर्य पीने के लिए विवश कर देता है, उसे लाला पक्ष की एक वीर्य की नदी में गिरा दिया जाता है, जहां उसे सदा वीर्य ही पीना पड़ता है। यक, कितना गंदा उसका क्या स्थिति होगी उसकी, जहां पर कंटिन्यूस उसको ऐसा पान करना पड़ता होगा। और उसके बाद है 19वां नरक, सार में आधन नरक, उसमें कौन से लोगों को भेजा जाता है, जो व्यक्ति दूसरों के घरों में आग लगाते हैं या दूसरों को विष दे देते हैं, उनको सार में आधन, जहां पर वज्र के समान दांतों वाले 720 कुत्ते उसको काटते हैं। सोचकर डर लगने लगता है कि एक कुत्ता जब पीछे पड़ जाता है, जिसके दांत भी इतने नोकीले नहीं होते, यहाँ पर लिखा है वज्र के समान, तो उस कुत्ते ने भी यदि काट लिया तो भी उसकी पीड़ा भी हमारे जैसा मनुष्य जो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई है कि 720 कुत्ते मिलकर उसको काटते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के घरों में आग लगाते हैं या दूसरों को विष दे देते हैं। उसके बाद 20वां नरक है अविचंपक नरक, कौन जाता है उसमें, जो व्यक्ति व्यापार में या व्यवहार में दान में हमेशा झूठ बोलता है, उसे 80 मील ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिया जाता है, और कैसे, उसका सर नीचे करके फेंका जाता है। उस नरक की पथरीली भूमि जल के समान मालूम होती है, ऐसा लगता है नीचे जल है परंतु उसमें जल नहीं होता, और वो पथरीली इतनी होती है कि जब उसका सर उससे टकराता है तो उसको इतनी पीड़ा होती है जिसका वर्णन किया ही नहीं गया, इतनी पीड़ा होती है जिसका वर्णन कर ही नहीं सकते। उसके बाद नंबर 21, आयापान नरक, जो उच्च परिवार का व्यक्ति मद्यपान करता है। देखो साफ साफ लिखा है जो शराब पीते हैं, अब यहाँ पर कोई बोल रहे शराब पीते हैं, वो कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, अगर नहीं लिखा तो क्या मतलब करोगे आप। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप मद्यपान करते हो या उसको आयापान नरक में भेजा जाता है, और वहां पर उसके साथ क्या होता है, गौर से सुनो, आया कहते हैं लोहा, आया कहते हैं लोहे को, और उस लोहे को पिलाते हैं। अब लोहा कैसे पिएंगे, लोहे को तपा करके यमदूत रस्सी से उसका मुंह खोलते हैं, उसकी छाती पर पैर रखते हैं और जोर से मुंह खोल के वो तपाया हुआ लोहा उसके मुंह में डालते हैं और उसको पीने के लिए विवश कर देते हैं। ऐसा खतरनाक उसको कंटिन्यूस पिलाया जाता है और उसके साथ इतनी उसको यातनाएं दी जाती हैं। उसके बाद नंबर 22, चार कदम नरक, जो व्यक्ति नीच होकर भी अपने श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान करता है, सम्मान नहीं करता, अपने से श्रेष्ठ लोगों की बेइज्जती करता है, उसे चार कदम नामक नरक में भेजा जाता है। उसके बाद है नंबर 23, उसका नाम है रक्षुबन भोजन, उसमें कौन से लोग जाते हैं, जो व्यक्ति काली की पूजा में मनुष्य की बलि देकर उसका मांस खाते हैं, मनुष्य की बलि जो देते हैं उसको रक्ष भोजन नरक में भेजा जाता है। उस और वहां पर राक्षस उसके शरीर का मांस काट काट कर खाते हैं और आनंद देते हैं, वो बार बार उसके शरीर का मांस खत्म होता है लेकिन क्योंकि यातना शरीर है, शरीर का मांस वापस से आ जाता है और फिर वापस से वो काटते, वो मरता नहीं है केवल कष्ट भोगता है। उसके बाद नंबर 24, शूलपुर नरक, जो व्यक्ति पशुओं और पक्षियों को धोखे से फंसा कर उनको दुख देता है, यमदूत उसके शरीर को तीखी चोंच वाले पक्षी चारों ओर से नोचते हैं, ऐसी जगह पे वो उनको ले जाते कि उनकी इतनी तीखी नोच होती है और पक्षी जो है चारों ओर से उसको नोच रहे होते हैं और यमदूत बालों से उसके शरीर को छेद देते हैं। उसके बाद है दंड सूत्र नरक। जो व्यक्ति सर्प के समान हमेशा क्रोध करता, देखो गुस्सा करने वाले के लिए कहा गया, खाली गुस्सा करते ना जो सर्प के समान। अब सर्प कैसे गुस्सा करता है कि आप उसको दूध पिलाओगे ना, फिर भी जब उसको गुस्सा आएगा, अगर दुम पे पाँव रख दिया ना, बोलते हैं सांप की दुम पे पाँव नहीं रखना चाहिए, तो वो इतना गुस्सा करेगा कि आपको वो सारे आपके एहसान भूल जाएगा और उसी टाइम पर आपको डस देगा। तो ऐसे व्यक्ति जो कंटिन्यू क्रोध करते रहते हैं सांप के समान और दूसरों को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, पांच या सात फन वाले सांप से उसको कटवाया जाता है दंत सूत्र नरक में। और उसके बाद है अब 26वां नरक, ओट निरोधन नरक। जो व्यक्ति अन्य प्राणियों को अंधे कुएं में कैद करके रखते हैं उन्हें अवट निधन नामक नरक में भेज दिया जाता है। ऐसे अंधे कुएं में रखा जाता है जहां पर विषैले धुएं से उसका दम घुटता है, क्योंकि उसने भी कैद किया था तो उसको वहां पर इसी यातनाएं दी जाती है। 27वां नरक है पर्यावर्तन नरक। जो ग्रस्त अपने घर में आए हुए अतिथि को क्रोध की नजर से देखता है, गुस्से से देखता है कि तुम मेरे घर पे क्यों आए, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे लिए, अतिथि का सम्मान नहीं करता है, तो जहां उसे वहां पर ऐसे नरक में, पर्यावर्तन नरक में भेजा जाता है जहां पर कठोर चोंच वाले पक्षी उसकी आंखें निकाल देते, क्योंकि गुस्से से देखा था ना इसलिए उसकी आंखें निकाल देते। 28वां नरक है शुचिमुख नरक। जो धनी व्यक्ति घमंड के कारण दूसरों से दुष्ट व्यवहार करता है, उसको यमदूत उसके शरीर को सुई धागे से वहां पर सिलते हैं, ऐसा वहां पर नरक होता है जहां पर उसके शरीर को सिया जाता है, उसका नाम है शुचिमुख नरक। नरक में किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होती, मौत नहीं, कंटिन्यूस यातनाएं होती हैं, और मौत से पहले हमें अपने अपराधों का, इन सारे अपराधों से साफ होना पड़ता है, इन सारे अपराधों का प्रायश्चित करना होता है, मृत्यु के पूर्व प्रायश्चित करना जरूरी है, अगर नहीं करते तो नरक में जाना अनिवार्य है। और शास्त्र कहता है कि इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आपको समस्त अपने अपराधों से, अपने समस्त पापों से छुटकारा दिला सकता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, साक्षात उदाहरण है। अजामिल कितने पाप किए थे, शास्त्र कहता है गिनाए नहीं जा सकते, इतने पाप किए थे, और किया क्या उसने, क्या किया, केवल और केवल भगवान का नाम लिया और आ गए विष्णुदूत यमदूतों के साथ लड़ाई करने के लिए कि तुम इसको लेकर जा रहे हो, इतना पवित्र आत्मा है, इसने भगवान का नाम लिया है और तुम इसको लेकर जा रहे हो, लेकर जाके तो दिखाओ, कभी हाथ तो लगाओ इसको, ये भगवान का नाम लिया है और तुम बोल रहे हो ये पापी है। उसी क्षण जिसने भगवान का नाम लिया उसी क्षण उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते, और कितने पाप नष्ट होते पता है, शास्त्र कहता है बृहद विष्णु पुराण लिखा हुआ है, नाम नो ही आवती शक्ति पापनर हरणे हरि तावत कर्तुम न शक्तोति पातकम पातकी नरः। हरि के एकमात्र नाम का उच्चारण करने से एक पापी व्यक्ति इतने पापों के फलों से बच सकता है जितने पाप वह कर भी नहीं सकता। तो भगवान का नाम उच्चारण करने से हमारे समस्त अपराधों का नष्ट हो जाता है, इसीलिए हमें सदैव भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल भगवान का नाम सुनकर ही पाप कैसे भाग जाते हैं, शास्त्र कहता है अवशेना पियम नामी कीर्तति सर्व पातकै पुमान विमुच्यते सद्य सिंह तृष्टैरमृगैर इव। यदि कोई व्यक्ति निस्सहाय अवस्था में अथवा अनिच्छा पूर्वक भी भगवान का नाम लेता है तो उसके सब पाप फल उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार सिंह के गरजते ही छोटे छोटे पशु भयवश पलायन कर जाते हैं। इसीलिए नित्यानंद प्रभु कहते हैं अपराध शून्य होए लह कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, आपके समस्त अपराध शून्य हो जाएंगे। शून्य का मतलब होता है जीरो, फिनिश, समाप्त हो जाएंगे यदि आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लोगे, भगवान श्री कृष्ण की शरण लोगे और भगवान को अपना सर्वस्व, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, सब कुछ कृष्ण माता की तरह आपकी रक्षा करेंगे, पिता की तरह अपनी समस्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके आपकी सहायता करेंगे और आपको हर कष्ट से बचाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है 18.66 में। और बहुत ही सुंदर गीता का सार है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते हैं सब धर्मों का भेद भुला कर एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। और भगवान की शरण में जाने से हमारे समस्त अपराधों का क्षय हो जाता है, इसीलिए तो भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस भगवान की शरण में जाना। और शरण में जाने का एकमात्र तरीका है भगवान की कथा का श्रवण करना और भगवान के नाम का कीर्तन करना, बस एक गाना ही तो गाना है, समस्त अपराधों से मुक्ति मिल जाएगी, सदैव तो गाते रहते हैं, ये गाना गा के देखिए भगवान की शरण मिल जाएगी और समस्त अपराधों से मुक्ति मिल जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।